ओम शांति। पल पल है भारी, विपदा ही है आई। किसका गीत है ये? जनक नंदिनी, सीता जानकी, राजा जनक को विदेह कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन जनक का है। ऐसे राजा जनक की पुत्री, ऐसे विदेह की बेटी, उसे कहा जाता है वैदेही। उस पर पीड़ा आई है, विपदा आई है, पल पल है भारी। क्यों हुआ ऐसा? क्या उसने कर दिया? किसने उसे आकर्षित कर दिया? उसकी आज चर्चा करेंगे। पल पल है भारी, विपदा है आई, मोहे बचाने आ जाओ रघुराई। राम को पुकार रही है, उस रघुनंदन को पुकार रही है, उस जगत नियंता को पुकार रही है। सीता के दो रूप है शास्त्रों में। एक तरफ तो जगत जननी है, माँ है, और दूसरी तरफ भक्ति में उसे माया का भी रूप कहा गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राम जी आके चल रहे, लक्ष्मण पीछे है, लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है कैसे? बीच में सीता है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। दो मार्ग है यदि लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है तो। एक तो सीता की ही शरण में चले जाओ, इसके लिए भक्ति में मां का गायन है, जगत जननी का गायन है। मां की इतनी भक्ति है, दुर्गा, काली, सरस्वती, महालक्ष्मी, वैष्णव देवी, शीतला देवी, संतोषी मां, उसका गायन। दूसरा मार्ग सन्यास का है, अद्वैत वेदांत का है, कि सीता कोई है ही नहीं, माया है, उसको हटा दो। नाम और रूप माया है। जीव को ब्रह्म तक पहुंचना है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, तो इस माया को ही हटा दो। तो ऐसी यह सीता, जिसे जगत माता भी कहा गया है, जननी भी कहा गया है, तो माया का एक रूप भी कहा गया है, वह जगत जननी जब विपदा की घड़ी में फंस जाए तो फिर क्या होता है? इसके पहले कि हम आगे बढ़े और उस मृग की तरफ आए, उस हिरण की तरफ आए, ऐसा क्यों हुआ इसे जानना आवश्यक है। वो कौन सी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जिस कारण से सीता शोक वाटिका में पहुंच गई? वो जो मृग था और उसका क्या स्वरूप था, वो चर्चा बाद में। पहले तो वो प्रक्रिया को देखना होगा जो सीता के मन में गुजरी। उस वैदेही के मन में थी विदेह की पुत्री वैदेही, परंतु उस वैदेही के मन में भी कुछ हुआ जिस वजह से वो उधर पहुंच गई। क्या हुआ सभी जानते हैं, फिर भी एक दूसरे ढंग से चर्चा करेंगे। ऐसे वो कौन से कारण थे, ऐसी वो कौन सी बातें थी जिस वजह से सीता कहाँ पहुंच गई, शोक वाटिका में, कहाँ पहुंच गई, रावण के जेल में। उसमें भी सात बातें, पहला आकर्षण, मृग को देखा और आकर्षण हुआ मृग का। क्या उसे ये पता नहीं था कि ऐसा कोई मृग ही नहीं होता था, परंतु उस समय जैसे बुद्धि भ्रमित हो गई और एक आकर्षण हुआ। देख के ही एक खिंचाव, एक कशिश हुई उस मृग को देखकर। पहली अवस्था उसके मन में आई, दूसरा इच्छा जागृत हुई, पहला आकर्षण हुआ, दूसरा इच्छा हुई। कौन सी इच्छा? पाने की इच्छा, ये मुझे चाहिए। देखा, आकर्षण हुआ और इच्छा हुई कि ये मुझे चाहिए। तीसरा, समझाया भी गया उसे, हट हट किया फिर कि मुझे चाहिए ही। पहले इच्छा, फिर है हट। संस्कृति में दो प्रकार की हट कहे जाते हैं, एक बाल हट और दूसरा स्त्री हट। स्त्री को यदि कुछ चाहिए तो जब तक नहीं मिलता चैन नहीं आता। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है स्त्री के पास, बड़े बड़े योद्धा, महारथी, राजा और सम्राट उसके सामने झुक गए थे। तीसरा हट किया उसने, चौथा धोखा, चौथा धोखा। कौन सा धोखा? मारीच की आवाज थी, रावण का अंश, मारीच अर्थात उसका अंकल था ना रावण का, अर्थात रावण के अंश को क्या समझा, हे सीते हे लक्ष्मण की आवाज को क्या समझा, राम की आवाज है, रावण के अंश की आवाज को राम की आवाज समझा। यह आवाज राम की है। धोखा हुआ उसे। अगला, लक्ष्मण ने उसे बहुत समझाया, परंतु क्या किया, और लक्ष्मण पर क्रोध, क्रोध, अविश्वास, क्रोध। जो उधर बातें बताई थी उसमें से दो तीन, रावण, लक्ष्मण चला गया, एक लकीर खींच दी। अगला, पहचान न सकी। किसको? रावण को। रावण क्योंकि हमेशा किस वेश में आता है? ब्राह्मणों के वेश में, सफेद साड़ी और बैच लगाकर। पहचान नहीं पाई। और सबसे अंतिम गलती सातवीं, कौन सी? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। ये इतनी बातें उसके मन में हुई या उसने की, उसके परिणाम स्वरूप कहां पहुंच गई? शोक वाटिका में पहुंच गई, रावण की जेल में पहुंच गई। राम ढूंढते ही रह गए उसको। हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। रामायण में आता है, बात कर रहा है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पंछियों, झाड़ों से, वृक्षों से पूछ रहा है, क्या तुमने उस मृगनयनी को देखा है? ढूंढ रहा है, भटक रहा है, पुकार रहा है, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में ढूंढ रहा है स्वयं राम किसको? सीता को। आ जाओ, पहली बात क्या हुआ सीता के मन में? आकर्षण उत्पन्न हुआ। स्टेप्स टुवर्ड्स रावण्स जेल, रावण की जेल में पहुंचने की विधि, सहज विधि। हम हर शब्द के पीछे सहज लगाते हैं, हमें आदत है, इस विश्वविद्यालय में सिखाया गया है, सहज परमात्मा प्राप्ति की विधि, सहज शांति की विधि, सहज ज्ञान, सहज योग। सहज, अति सुलभ रावण की जेल में पहुंचने की विधि। हे ब्रह्मा कुमारियों, सुनो, ये रावण की आवाज है, निशुल्क, 3 दिवस में भी हो सकता है। पहले 7 डेज का कोर्स था रावण का, एक है राम का 7 डेज कोर्स और दूसरा है रावण का सप्ताह कोर्स। इधर 3 दिन हो गया तो उसने भी अपना 3 दिन का कोर्स निकाला। सहज क्या हुआ? सबसे पहले आकर्षण हुआ, व्यक्ति का और वस्तु का आकर्षण। व्यक्ति का और वस्तु का आकर्षण, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसका स्वभाव बहुत मीठा है, इसमें गुण बहुत है, ये हस्ती बहुत अच्छी है, इसका चिंतन बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, ये अनन्य रतन है बाबा का और मेरा भी। ब्रैकेट में बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं और ब्रैकेट में व्यक्ति और वस्तु। वस्तुएं आ सकती है, भगवान नहीं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में वर्णन है, एक वेश्या आती है और अपने बालों से एक बहुत कीमती इत्र, खुशबू, सेंट लेकर आती है, उसके पैरों पर डाल देती है और अपने बालों से उसके पैरों को धोती है। दूसरा एक शिष्य वहां खड़ा रहता है, जुड़ास, वो कहता है, अगर इसने ये जो इत्र की सीसी है, सेंट की बॉटल है, इसको अगर बेचा होता बाहर और उसके जो पैसे मिले होते और गरीबों को बांट दिए होते तो कितना पुण्य होता इसका। जीसस क्राइस्ट कहता है करने दो उसे। वो सेंट तो वापस आ सकता है पर मैं वापस नहीं आऊंगा। थिंग्स कैन कम बट नॉट आई। उसकी भावना है, व्यक्त करने दो उसको, उसकी भावना को। यहां पैसों का मोल नहीं है, वस्तुएं आएगी और जाएगी। आज कुछ भी नहीं है, कल सब कुछ होगा। आज सब कुछ है, वो सब चला जाएगा। जाने को कितना टाइम लगता है। पांच सौ की और हजार की नोट बंद हुई है। एक समय आएगा जब सारी ही नोटें व्यर्थ हो जाएगी, तब क्या करेंगे। रुपये ने अपना स्वरूप बदला है, स्वभाव नहीं। लक्ष्मी ने स्वभाव नहीं बदला है, स्वभाव अभी भी वही है लक्ष्मी का, किसी के हाथ में नहीं टिकती। केवल रूप बदला है थोड़ा सा। वस्तुएं आएगी और वस्तुएं जाएगी, अनित्य है। पर हमारा एक एक वस्तु से मोह है। कम खर्च बाला नशीन, ये स्लोगन है आज के मुरली में, वरदान में। पर वस्तुओं से अधिक कीमती संबंध है। संबंध से भी अधिक कीमती स्थिति है। सेवाओं में ये तीन चीजें हैं। सबसे टॉप का स्थान सेवाओं में है स्थिति को। अगर स्थिति बिगाड़ कर सेवा कर रहे हो तो वो सेवा नहीं। दूसरा है संबंध। किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, उसे हमने इतना डांटा और वो संबंध टूट गया। इतना क्रोध किया, इतना कुछ बोल दिया, इतने बांध छोड़ दिए कि वो संबंध में क्रैक है। अब एक 10 साल हो गए परंतु क्रैक वैसी ही है। एक बार जो टूट गया वो टूट गया, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। सेवाओं में एक तरफ सेवाएं हैं, दूसरी तरफ साथी है। सेवाएं तो आती रहेगी, साथी नहीं आएगा। जो संबंध है वो यदि टूटा वो नहीं आएगा। थर्ड नंबर पर सेवा है। सेवाओं में स्थिति, फिर संबंध रिलेशनशिप, और बाद में सेवा। सेवाओं में नुकसान हो गया चलेगा, पर आत्मा रूठ के ना जाए। क्योंकि आत्मा यदि रूठ के चली गई वो नहीं वापस आएगी। पैसा आ सकता है, व्यक्ति नहीं आएंगे। मधुबन में एक भाई है, शायद सभी जानते हैं, नाम नहीं बताएंगे। बहुत अनन्य भाई अब भी है। बहुत समय से पुरानी एक बात है, वो पहले गाड़ी चलाते थे फिर छोड़ दिया चलाना। एक बार मधुबन में जो कुटिया है, कुटिया से जब बाहर निकलते एक रास्ता नीचे जाता है पीछे की गेट की तरफ, एक रास्ता शांति स्तंभ की तरफ। वो जो पीछे की ओर रास्ता जाता है, ब्रेड डिपार्टमेंट जहां है, वहां पर एक बड़ा ट्रक खड़ा था, कहीं से आया हुआ था, सेंटर से कुछ आम या कुछ आए। तो वो थोड़ा सामने था उस रास्ते में। उस भाई को लगा कि इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूं ट्रक को। तो उसने ट्रक चालू किया, उसे आदत थी नहीं, बहुत पहले कभी चलाया था, और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ट्रक, और ट्रक सीधा पीछे रिवर्स में चालू हो गया। पीछे दो तीन कारें थी, धाड़ धाड़ धाड़, तीनों कारों को टकराते हुए वहां पर एक थोड़ा सा चट्टान जैसा है, लोहे ईंट का बना हुआ, सीमेंट का, उस पे जाके रुक गया वो ट्रक। दो तीन कारें थी, जबरदस्त टकराया। बात दादी प्रकाशमणि तक पहुंची कि ऐसा हुआ है। इस भाई ने ट्रक चालू किया और ये नुकसान हो गया यज्ञ का। वो थोड़ा डर गया, अब क्या होगा। ऐसी बातें आग की तरह फैलती है। दादी ने उसको बुलाया बाबा के कमरे में। उसको न्यूज मिली, खबर मिली कि दादी ने तुमको बुलाया, और डर गया। मतलब दादी तक भी पहुंच गई बात। अब तक तो दो तीन लोगों ने देखा था, होने वाला था वो पता है, पर अभी कंफर्म न्यूज आ गई कि दादी ने तुमको बुलाया है। वो इतना डरा, अंदर से इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, और पहुंचा बाबा के कमरे में जहां दादी थी। तो दादी ने बोला, आओ 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 बैठो। नाश्ता किया, उसको कुछ बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं थी, क्या बोलेगा। फिर दादी ने कहा, लो टोली खाओ। टोली खिलाया, अब जाओ। कोई चर्चा ही नहीं, बस नुकसान चलेगा, व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ बोल दिया होता, वो छोड़ के चला गया होता, शायद ज्ञान भी हो सकते हैं। ऐसे अनन्य तो नहीं जाएंगे, पर जो नए नए हैं, अभी अभी आए हैं, अभी अभी जिनका कोर्स किया है, अभी अभी जिनको एक सेवा दी गई और सारी गड़बड़ कर दी, अभी अभी नई बहन आई, उसको कहा भोजन बनाओ, सब उलट पुलट कर दिया, और मेहमान सामने हैं। दो विकल्प है, एक तो इतना डांटो कभी ना भूले, दूसरा है कुछ दूसरा मार्ग ढूंढो, जो परिस्थिति है, जो गेस्ट है, उनको खिलाने का। जब डांट पड़ती है किसी आत्मा को, निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है अंदर, विरोध और बदले का भाव और सप्रेशन, दमन होता है, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, छोटे हैं। वही नकारात्मक ऊर्जा लेके चलती है आत्मा, अवसर की तलाश में है। फिर परिस्थिति आएगी और वो चली जाएगी यहां से। एक दूसरा भी उदाहरण साहब ने सुना ही होगा, एक नया नया सेवाधारी भाई शांतिवन में आ गया, किचन डिपार्टमेंट में। सुबह सुबह 4:15 बजे किचन में गया, उसकी सेवा थी। देखा एक बहुत बड़ा पतीला है जिसमें पानी है, परंतु वो पानी नहीं था, चाशनी शक्कर की बनी हुई, शायद भोग के लिए। कितने किलो की होगी वो बता नहीं सकते, इतनी किलो उसमें शक्कर होगी उसकी वो बनाई हुई। उसको लगा पानी है और फेंक दिया सारा, और जैसे बाकी लोगों को पता चला वो एकदम डर गया, अब क्या होगा मेरा। और न्यूज फैलती गई सब ओर। एक भाई सुबह संदेश लेकर आया कि तुम्हें दादी ने बुलाया है कॉटेज में। ऐसा संदेश मैं दू, कितना उमंग आता है ऐसा संदेश पहुंचाने में। अच्छा लगता है ना ये संदेश देने में किसी को, तुम्हें बुलाया है जाओ। क्योंकि हमें भी किसी ने दिया था, अब हमारी बारी है, अब हम देंगे। मेडिटेशन हॉल में एक बार दो भाई हमारे सामने ही थे, योग कर रहे थे, तो एक भाई नींद आ रही थी, बहुत नींद, एक सेकंड भी नहीं टिक रहा था बिल्कुल, कभी इधर कभी उधर। तो दूसरा भाई एकदम अलर्ट होके बैठा था, उसने उसको एकदम आंखें दिखाई और बहुत डांटा, हे योग। तो वो जो सो रहा था वो अलर्ट हो गया। फिर थोड़े देर के बाद ये जो भाई था जिसने उसको डांटा था, वो गिरने लगा इधर उधर, कभी यहां कभी वहां, और उसको जबरदस्त नींद आने लगी। अब इसकी बारी थी बदला लेने की। और उसने उसको बहुत जोर से डांटा। तो शुभ संदेश कौन लेके जाएगा? इसकी बहुत अच्छी प्रबल इच्छा होती कि मैं पहले बताऊं, सबसे पहले ये न्यूज हम बताएंगे। कोई भी न्यूज, नई न्यूज होती है ना, इच्छा होती है कि हम बताएं सबको जिनको पता नहीं। कोई भी न्यूज हो यज्ञ की, उसमें एक अलग ही अतीन्द्रिय सुख है। तो उस भाई का भी ऐसा ही, दादी ने बुलाया, दादी ने कहा नाश्ता किया, वो क्या बोलेगा, उसको पानी पानी पसीना, बस उसने तो तैयारी कर ली थी आज रात में ही टिकट मिले या ना मिले घर जाना है बस, ये तो कैसे कोई सहन करेगा। दादी ने टोली खिलाई, जाओ बस। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बुलाया, कुछ भी नहीं, कोई वर्णन नहीं, कुछ नहीं, और भेज दिया उसको। वस्तु संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, सेवाएं संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और संबंध स्थिति से महत्वपूर्ण नहीं है, सर्वोपरि स्थिति है। अगर कोई संबंध स्थिति को ही खराब कर रहा है, चाहे वो कितना ही अपना लगता है, पर वो बाधा है फिर। तो सबसे पहले सीता के मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ, फिर इच्छा हुई, फिर हुई इच्छा, इस वस्तु को पालू, इस व्यक्ति को पालू, अगर मुझे ना मिला तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। इच्छा, इच्छाएं अनंत है, एक पूरी होती है दूसरी उठती है, वो पूरी होती है दूसरी उठती है, जिस वस्तु को चाहिए वो पाते ही वो वस्तु व्यर्थ हो जाती, फिर अब दूसरा चाहिए, और नहीं मिली तो जीवन भर दुख, मिली तो दुख, दूसरा दुख पहले दुख से अधिक है। एक दुख है वस्तु चाहिए मिल नहीं रही है, वो दुख, दूसरा दुख है वस्तु मिल गई उसके बाद का दुख। किसी एक विचारक ने कहा है वो जो दुख है वो थोड़ा ज्यादा है। किसी एक सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में एक दिन एक नेताजी विजिट करने जाते हैं मिलने के लिए, और वहां का मेंटल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है साइकेट्रिस्ट उनको घुमाता है। एक सेल होता है, एक कमरा जिसमें एक प्रिजनर, एक आरोपी होता है, उसको देखते सबसे पहले तो वो चीख रहा है, पुकार रहा है, और उसके हाथ में एक पुतला है, एक गुड़िया है, उसको गले से लगाए हुए है और रो रहा है, उससे बात कर रहा है, ये दृश्य दिखता है। तो नेताजी पूछते हैं उस साइकेट्रिस्ट को, उस डॉक्टर को, इसको क्या हुआ? वो कहता है ये किसी से प्यार करता था परंतु इसको वो मिली नहीं, और तब से ये पागल हो गया, इसके लिए इधर इसको पागल खाने में भर्ती कर रखा है, और वो जो गुड़िया है वो वही स्त्री है जिसकी गुड़िया इसने बना रखी है और उसको पकड़ के रहता है उसके दुख में, उसके विरह में। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेल, दूसरे कमरे में आते हैं, वहां एक अपराधी होता है, वो तो उससे भी खूंखार, जोर जोर से नाखून से खरोच रहा था दीवार को, अपने सिर को पटक रहा था, चिल्ला रहा था। नेताजी पूछते ये कौन है? वो कहता ये वही है उसकी जो थी उसने इसी के साथ शादी की, उसके बाद ही इसका ये हाल हुआ। दूसरा जो दुख है वो पहले से भी अधिक है, क्योंकि जो नहीं मिला उसमें आकर्षण रहता है, चाहिए चाहिए, जैसे भक्तों में तीव्रता बहुत है भगवान के लिए, यहां पेट भरा हुआ है, मिल गया, रोज का ही है, बाप आकर पढ़ाते हैं, तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते, 10 साल से भगवान ही पढ़ा रहे, छोड़ो। भक्त के लिए बहुत तीव्रता है अंदर, क्योंकि मिला नहीं है उनको। इधर अपना बाप है, बाबा आते थे पहले पहले तो रात भर रहते थे, वहां के भाई बताते हैं बाबा हम लोग बैठते थे एक दो घंटा, फिर हम लोग चले जाते थे सोने के लिए, फिर सुबह उठ के आते थे बाबा बैठा ही है, भगवान बैठा है। एक बार तो ऐसे भी बताते हैं कि बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठे थे और भाई लोग बैठे थे, और बाबा को कहा माता है भोजन पर गई है, तो माता है भोजन पर चली गई, और कुछ भाई बैठे थे वो भी कितना देर बैठे और क्या बात करे, वो भी उठ के चले गए, बाबा अकेला हिस्ट्री हॉल खाली। भगवान की ये दशा कि वो अकेला बैठा है, कोई तो मेरे से बातें करे, और अभी देखो वहां स्टेज पर भी मुश्किल है पहुंचना, वो भी उसी का रूप है, वो एक समय था, अपना ही है, घर का ही है। तो एक है न मिलना फिर दुख, एक है मिल गया और मिलते ही पता चलता है निरर्थक है वस्तु, अब दूसरा चाहिए कुछ। तो इच्छा, इच्छाओं का स्वभाव, इच्छाओं का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ डिजायर्स किस तरह काम करती है उसको थोड़ा समझना है, कैसे तरंगे उठती है मन में इच्छाओं की। तो दूसरा आकर्षण, दूसरा इच्छा, तीसरा हट किया उसने, फिर चाहिए, ये चाहिए कैसे भी करके चाहिए, कुछ भी करना पड़े फिर वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस हट। बाबा कहते हैं ना जिद और सिद्ध दोनों ही माया के रूप है, एक है जिद करना, हट करना चाहिए, एक दूसरा है सिद्ध करना कि मैं राइट हूं। 2010 की मुरली है एक, डबल विदेशियों से मुलाकात, माया के दो रूप, पहला रूप मैं राइट हूं, दूसरा व्यर्थ संकल्प। मैं राइट हूं ये माया का ही रूप है, जिद करना, सिद्ध करना, हट करना, तीसरा सीता के मन में हट, चौथा धोखा। आवाज थी उस मारीच की, रावण का जो अंश है, परंतु समझा ये राम की आवाज है। रावण राम की आवाज निकालने में निपुण है, वो भी बाबा जैसा बोल सकता है धीरे धीरे, बच्चे ही बोल सकते हैं तो वो नहीं बोल सकेगा, बोल सकता है, हमें लगेगा उसकी आवाज है, भगवान की है, पर वो है रावण की आवाज। किसकी आवाज सुनकर हम चल रहे इस जीवन में, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये आवाज किसकी है, हम कहते हैं ये अंतकरण से आ रही, हमारी टचिंग हुई है हमको, ऐसा कहते हैं ना, बीके हर चीज बहुत रॉयल भाषा में प्रयोग करते हैं, हर चीज के लिए रॉयल शब्द है। कहां है भाई जी, रेस्ट पर है, क्या हुआ, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसे ऊंचे शब्द होते हैं, अलौकिक शब्द होते हैं। धोखा ये जानना, मनमत क्या है, परमत क्या है और श्रीमत क्या है, इसको छांट देना, अर्थात ब्राह्मण जीवन, इसको अलग कर देना तीनों को, ये मनमत है, ये श्रीमत है, ये परमत है, इधर 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 करना क्या है, अब यही जीवन का की कला है, समझ लेना ये मनमत है, समझ लेना ये परमत है, समझ लेना ये श्रीमत है, इस पर चलना है, उसी में सेफ्टी है। जैसे ही उधर गए, वो एक विधि है रावण के जेल तक पहुंचने की। तो धोखा, धोखे के बाद क्रोध, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है, दूसरी हमारी बात नहीं मानते, हम जो कह रहे हैं वो सुनते नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, हमने जैसा प्रोग्राम बनाया वैसा नहीं माना गया, हमारी जो प्लानिंग थी, हमारी हमने जो सोचा था ये प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए, इस तरह से पॉम्पलेट बनना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, इस स्थान पर सेवा होनी चाहिए, यह स्थान लेना चाहिए, कोई भी कारण हो, क्रोध, वो जो मुरली चली थी, पांच विकार और उनके पांच अंश, उसमें क्रोध का अंश था सूक्ष्म घृणा, किनारा कर लेना, फाइनल सर्टिफिकेट दे देना, यह ऐसा ही है, स्टैंप लगा देना। प्यारा न्यारा बनना अलग बात है, पर किनारा कर देना अलग बात है, सूक्ष्म घृणा, ये क्रोध का अंश उस मुरली में बाबा ने कहा था। तो क्रोध, अगला पहचान न सकना, रावण सामने है वेश बदल के, उसको नहीं पहचान पा रहे, हमें लग रहा है ये तो बहुत अनन्य बाबा का बच्चा है, परंतु शायद वही माया है जीवन में, हमको लग रहा है ये जो हमारा संबंध कितना मीठा है शायद वही माया है, हमें लग रहा है ये जो साधन है जिससे इतनी सेवा हो रही है शायद वही बंधन है, हमें लग रहा है ये भाई कितना मीठा है, कितनी मदद करता है, शायद वही माया है, हमें लगता है ये इतना सहयोग करता है, शायद वही माया है, सहयोगी होते हैं संसार में बहुत सारे, परंतु सहयोग तो करते हैं और डराते भी बहुत हैं, धन का सहयोग करते हैं परंतु रौब भी जमाते हैं, उनका सुनना भी पड़ता है बहनों को बहुत कुछ, क्योंकि बहुत कुछ किया है उन्होंने, उससे तो ना हो सेवा वही अच्छा है, मैसेजेस भेजते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और कुछ कुछ करते हैं, क्यों, तो कुछ दिया है और कुछ कह नहीं सकते, ऐसी सेवा नहीं चाहिए, सेंटर बनाने का एक नियम जगदीश भाई ने लिखा था कभी, सेंटर की दीवार किसी भी विकारी के दीवार को स्पर्श न करे, सेंटर की दीवार एक ही दीवार ना हो, इधर की और उधर की, और किसी भी विकारी का एक पैसा भी उसमें ना लगे, ये दो बातें हैं, नहीं बना तो भी ठीक, पर कोई विकारी का पैसा उसमें ना लगे, किसी विकारी की दीवार से वो स्पर्श ना करे, मजबूर होना पड़ता है कभी कभी कुछ कुछ सहयोगी आत्माओं के आगे, क्या हम इतने कमजोर हैं, क्या ये हमारा कार्य है जो हम भूल गए, ये तो परमात्मा कार्य है, वो कराएगा, हजार सहयोगी आके खड़े हो जाएंगे, कोई एक ही नहीं चाहिए, रावण की आवाज और राम की आवाज, और अंतिम है रेखा को पार किया, कौन सी रेखा, मर्यादाओं की रेखा, नियमों की रेखा, कोई बहुत सहयोगी है परंतु विकारी है, एक बार हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हमें मिल गए थे शांतिवन में, बाबा से मिलने आए थे, हमें आश्चर्य लगा ये कैसे पहुंच गए यहां, ना तो कोर्स ना कुछ, पर पहुंच गए थे, और वहां से जाने के बाद बहुत गलत प्रचार भी किया कि सब देख के आ गए, क्यों लेके आए थे उनको, क्योंकि हॉल दिया करते थे। सहयोगी, परंतु कुप्रचार किया बाद में, सब कुछ देख लिया क्या है इनका। कोई तो एक दादी बैठती है और ये लोग कहते हैं भगवान है, भगवान विगवान कुछ नहीं है, पैसा बहुत है वगैरह वगैरह प्रचार किया बाद में। वहां से जाने के बाद इंद्र सभा की पॉइंट आती है मुरली में, मर्यादा को छोड़कर किसी को सुख देना श्रीमत नहीं है, चाहे उसको कितना भी अच्छा लगे। फिर दादी प्रकाशमणि जी के जीवन का एक अनुभव है कि दादी को किसी एक अनन्य भाई ने बुलाया घर पे, केवल सहयोगी थे पूरा युगल और परिवार, पर ज्ञान में नहीं थे। और दादी को उन्होंने बहुत आग्रह किया भोजन के लिए, बहुत दादी ने बहुत समझाया पहले तो कि हम भूख नहीं है वगैरह वगैरह, पर उन्होंने बहुत ही, हमने बहुत प्यार से बनाया। दादी ने कहा हम बाहर से नहीं खाते, उन्होंने कहा ये बाहर का नहीं है, घर का ही है, हमने बनाया खुद हाथों से बनाया है। बहुत कुछ उनको समझाया, पर दादी ने फिर लास्ट में एक ही बात कही। उसने ये भी कहा क्या आप अगर ये अन्न खा रहे हो तो आपकी 60-70 साल की जो पवित्रता और तपस्या भंग हो जाएगी केवल इस अन्न को खाने से, तो कैसी तपस्या है आपकी। यहां तक बात आ गई कि 70 साल की आप योगी हो, 60 साल की, क्या एक बार ये अन्न खाओगे तो आपकी पवित्रता भंग हो जाएगी। दादी ने कहा यह बात नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं खा लू तो, पर मुझे फॉलो करने वाले हजारों है, वो इतने शक्तिशाली नहीं है, मैं अगर खा लू तो कुछ नहीं होगा। अगर दादी जानकी कहीं बार में जाके बैठ जाए तो वो अपवित्र होगी क्या, वो बार पवित्र हो जाएगा, वहां पर भी ज्ञान की पताका लहरा देंगी दादी, ऐसी पावर है अंदर। परंतु इतनी बड़ी पलटन है पीछे, सब लोग दादी ने खाया तो हम भी खाएंगे, बाबा को याद करो और खाओ, कारण तो चाहिए बस, और ऐसे कारण देने के बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, दादी कर रही है तो हम भी करेंगे। तो दादी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं खा सकती कि मुझे फॉलो करने वाले हजार हैं, और सभी टीचर्स, कल की मुरली कहां है, स्टेज पर है, स्टेज पर जो व्यक्ति करेगा उसको सब फॉलो करेंगे, जो बहन करेगी सारे स्टूडेंट्स भी वही फॉलो करेंगे, कहो या ना कहो केवल देखकर। जो आदतें बहन में है वो अपने आप स्टूडेंट्स में ट्रांसफर हो जाती है, लेट आने की आदत है इधर उधर भी वो ट्रांसफर हो जाती है, सारी आदतें गुप्त रूप से अप्रकट रूप से ट्रांसफर हो जाती है। हमने कभी कहा नहीं किसी को, कुछ बोला भी नहीं, अच्छी भी आदतें जाएगी तो बुरी भी आदतें चली जाएगी। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हम खुद है, धारणा हमारी जितनी है वही ट्रांसफर होगी, हमारे शब्द तो गौण है, जिसमें जितना धारणा है तभी उस शब्दों में बल होगा, उस वाणी में आकर्षण तभी होगा जब उस वाणी के पीछे धारणाओं का स्वर मूर्त रूप खड़ा है, नहीं तो वो वाणी आकाशवाणी नहीं होगी, देववाणी नहीं होगी, लौकिक वाणी होगी। शब्दों में आकर्षण, वाणी में आकर्षण ब्रह्मचर्य का तेज और ओज है। यदि पवित्रता में ही हलचल है तो वो तेज भी नहीं होगा, हृदय को चीर देने वाली वो वाणी नहीं होगी, सुनेंगे और चले जाएंगे बस। हम स्वयं धारणा मूर्त हो, लोग हमसे केवल धारणाओं से सीखते हैं। ज्ञान तो वो इंटरनेट पे भी पा सकते हैं, सब कुछ है आज, सब कुछ। इतनी ऐसी वेबसाइट्स है इंटरनेट पर जिसमें ऐसे भी ग्रुप्स है, एक्स बीके जो पहले बीके थे अभी बीके लाइफ छोड़ दी है और आपस में मिलते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते, वहां हम कितने दुखी थे जब बीके थे तब। विदेश में ये सारा प्रकार है, भारत में इतना नहीं है, विदेश में सब कुछ है। वहां क्या क्या होता था, कितने हम सुखी है वहां से छूट गए। एक बार तो हमको किसी ने अनुभव सुनाया था, एक माता जी का, जिसने कहा था अपने इंटरव्यू में, जब से मैं वो कोई बाबा है उनके पास गई हूं, मेरे पति को भी नौकरी मिल गई, उसकी बीमारी भी ठीक हो गई, 15 साल ब्रह्मा कुमारी में थी, कभी नहीं हुआ ये। दादियों के संग में साथ में रही, दादियों से मिली, बाबा से मिली, कोई अनुभव नहीं हुआ, अच्छा हो गई, वहां से छूट गई। ऐसा वीडियो इंटरव्यू। सब कुछ है संसार में, इनको लाना वापस बहुत मुश्किल काम है, जो ज्ञान छोड़ के गए। एक, क्योंकि सभी बहनें बैठी है तो एक बात यहां कहने योग्य है, जो जो ज्ञान छोड़ के गए उनकी एक लिस्ट बनानी है और कैसे उन्हें पुनः वापस लाना है इसके ऊपर सोचना है। एक सेंटर की बहन ने, उनका बहुत सुंदर पत्र है, आप चाहेंगे तो हम देंगे आपको, 2 पेज का। वो बहन उसमें लिख रही है उन लोगों को जो ज्ञान छोड़ के गए हैं, उनसे बात कर रही है, हे मेरे प्रिय आत्मन, क्यों आप छोड़ के गए, क्या हमसे कोई गलती हुई, अगर गलती हुई तो हमें माफ करना। बहुत सुंदर पत्र लिखा हुआ है एक, कि जिसमें उन लोगों को वापस ला रहे हैं जो छोड़ के गए हैं। वो अगर हम सेवा कर पाए, बजाय इसके कि नए बहुत सारे आ जाए, नयों को लाने की चिंता नहीं करनी है, नयों का कोर्स कराने की चिंता नहीं, जो है उन्हीं की पालना करनी है, और जो छोड़ के चले गए हैं उनको वापस किस युक्ति से लाया जाए, क्या करे, क्या उनके घर पे जाना पड़े, तो जाओ, पर उन्हें वापस लाना है। शायद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ ना कुछ देखा है, ऐसा कुछ ना कुछ देखा है, शायद हमारी चलन गलत थी, खराब थी, हमारा ही क्रोध था। हमने तो सुना एक बहन ने संडली पर से ही बैठ के चप्पल फेंक के मारी थी किसी को, इतना क्रोध। वहां के भाई बहने उस बहन की पालना करते हैं, बात बात में क्रोध, कब क्रोध आ जाए बता नहीं सकते, और वो भी छोटा मोटा क्रोध नहीं, भयंकर क्रोध। पर वो तो पुराने भाई बहने हैं सारे, वो ही उसकी पालना करते हैं मानसिक सकाश से। नियम और मर्यादाओं का हम स्वरूप बन जाए तो ये 7 बातें सीता के मन में चली और वो फिर रावण की जेल में पहुंच गई। अभी ये जो स्वर्णिम मृग है ये कौन सा है, उसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। कौन से ये मृग है, कौन सा ये हिरण है, इस ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन में जो आते हैं और हमें आकर्षित करते हैं, इसकी चर्चा कल कुमारों की क्लास में भी थोड़ी अलग रीति से करी थी, पर आज बहुत सारी नई बहनें हैं इसके लिए थोड़ी चर्चा फिर से करेंगे। पहला, जैसे कहा, व्यक्ति, उसका विस्तार नहीं करेंगे, व्यक्ति। दूसरा, वस्तु, वो भी एक मृग है। तीसरा, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, आध्यात्मिक मैत्री, दोस्ती। ये जो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है, जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं, मैत्री कहते हैं, कब ये विकारी बन जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी केवल यही नहीं है, संसार में हजारों संस्थाएं हैं आध्यात्मिक और अब से नहीं है, द्वापर से है, उन सब के अनुभव है जुड़े हुए हैं। कैसी मैत्री हुई और क्या हो गया बाद में, पवित्र प्रेम का नाम देते हैं। वो बहन बैठी है तो योग अच्छा लगता है, वो बहन नहीं है तो योग नहीं लगता है। भाग कर जाते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। क्षणिक सुख, क्षणिक आवेश। ऐसे ही एक बार भाग के गए थे दो लोग, और फिर दादी प्रकाशमणि से कितनी माफी मांगी 6 मास तक, और फिर दादी ने हां किया। दोनों ही समर्पित, परंतु अब यज्ञ की बाहर है, नौकरी करते हैं, संपूर्ण धारणाओं पर है अभी। परंतु एक स्टैंप लगा है, एक कलंक, वो कैसे मिटेगा? डिसर्विस जो हुई वो कैसे वापस आएगी? व्यक्ति, वस्तु और स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, इसके लिए किससे हमारी दोस्ती है? ये दोस्ती शब्द लौकिक का है, पर यहां पर भी दोस्त बनाते हैं। ये हमारे गांव का है, ये महाराष्ट्र का है, ये पंजाब का है, ये हमारे उधर का है। कभी आपस में मिलने के बाद किसी ने ये कहा कि आप भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई? कहा है किसी ने? ग्रुप्स, हम भी वहां से, आप भी वहां से। कल भी एक कुमारों की क्लास में छोटी सी कहानी सुनाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब की, शोशीर कविता, बंगाल में लिखी हुई, बंगाली में लिखी हुई, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष का बहुत प्रेम है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं। वो स्त्री बहुत अमीर है, पुरुष जो है वो थोड़ा गरीब है, परंतु वो एक शर्त रखती है, शादी तो हम करेंगे पर साथ में नहीं रहेंगे। वो जो सामने महल है उसमें तुम रहोगे और ये जो महल है इसमें मैं रहूंगी, बीच में झील है, कभी हम मिल लिए तो मिल लिए, मीटिंग नहीं होगी कभी। तुम नौका विहार कर रहे हो, मैं उधर से आ रही हूं, तो मिल लिए बस। वो कहता है ऐसी भी कोई शादी है जिसमें हम साथ ही नहीं रहेंगे? वो कहते हैं ऐसी ही शादी है, क्योंकि दो व्यक्ति लंबे समय सब जग साथ रहते हैं, वो जो फ्रेशनेस है संबंध की वो कम हो जाती है, अवगुण दिखने लगते हैं, दोष दिखने लगते हैं, गलतियां दिखने लगती है, और उन्हीं के ऊपर ध्यान रहता है सारा। इसके लिए वो कहती तुम उधर मैं इधर, अगर हां तुम्हें दूसरी शादी करनी है किसी और से तो कर सकते हो, परंतु मैं केवल तुमसे प्यार करती हूं, अगर तुमने नहीं की तो तुम्हारी यादों में सारा जीवन बिता दूंगी। पर शादी ऐसी होगी, कभी हम मिलेंगे नहीं, तुम उधर हम इधर और वो उधर, सबके बीच में रहना है, परंतु बीच में झील, मिल लिए बीच में तो ओम शांति और टाटा, मिलने के बाद भी फिर कैसे हो, क्या बनाया, क्या खाया, कब उठे, कहां जाना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए संबंधों में डिटैचमेंट, एक सुगंध है संबंधों का, संबंधों की सुगंध जो है वो न्यारापन है, जहां फैमिलियरिटी आ जाती है, टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हाँ ये तो कर ही देगा, वो संबंध डिटियोरेट होता है वहां पर। संबंध फ्रेश रहे हमेशा, उसके लिए वो डिटैचमेंट जरूरी है। कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है बहुतों के साथ, आते हैं मिलते हैं बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं 10 साल से है, सेवा करते वो जाते हैं, हम भी उनसे बात करते हो गया, पर जो नजदीक रहते हैं उनसे एक अटैचमेंट डेवलप होती है, उसमें वो डिटैचमेंट नहीं है, वो डिटैचमेंट नहीं है तो फैमिलियरिटी, और जहां फैमिलियरिटी है वहां पर फिर दोष दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति आया, लाइट ही ऑन कर दिया, हम सो रहे थे, पैर ही मार के चला गया, रूम पार्टनर साथ में रहने वाले, हमको खिड़की बंद चाहिए, वो आया खिड़की खोलती, बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं। उनके प्रति मन में निगेटिव भाव उत्पन्न होता है। इसके लिए हर संबंध में एक डिटैचमेंट चाहिए। तो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। अगला फैशन, व्हाइट में भी फैशन, वो तो छूट गई, रंगीन की दुनिया। व्हाइट में रंगीन तैयार करना, फिर रंग बिरंगी दुनिया इस व्हाइट में तैयार करना, अलग 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 प्रकार के फैशन, उसको आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं हमसे। अगला है लौकिक परिवार। अगर ये बात नहीं हुई तो हम जा रहे घर, हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो हम जा रही है घर। छुट्टी मिली तो बहुत खुशी होती है, बहुत दिनों के बाद घर का भोजन खाया, बरन भात घर का ज्यादा ही टेस्टी लगता है इधर से, लगता है ना? नहीं? थोड़ा थोड़ा तो लगता होगा। जिस स्थान को छोड़ा है, जिस घर को छोड़ा है, छोड़ दिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इंग्लिश में तीन शब्द आते हैं, नोट करने जैसे शब्द है तीनों ही। पहला कट द ब्रिजेस, कट द ब्रिजेस, पुल को काट दो। आर्मी में नियम है, अगर यहां कोई है, बीच में खाई है और इधर कुछ है तो बीच में पुल बांधते हैं, एक बार उधर चले गए कि कट कर देते हैं, ताकि वापस भागने का कोई चांस ना हो। जिंकू कि वह मरू, युद्ध आमुचे पूर्ण करू। एक बार इधर चले गए तो वापस जाने का कोई मार्ग नहीं, कट द ब्रिजेस। इस योगी जीवन का भी यह नियम है, कट द ब्रिजेस। इधर आ गए, अब इधर कुछ भी हो, जो भी हो, सब इधर ही। मर भी गए तो अर्थ भी इधर से ही उठे, परंतु उधर नहीं, छोड़ दिया, सो छोड़ दिया। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, बोट को डुबो दो। जिस नाव में बैठकर उस दुनिया से इस दुनिया में आए, इस दुनिया में आकर इस जमीन पर आकर अब ये जो नाव है उसको डुबो दो, ताकि वापस उसी जमीन पर जाने का कोई संकल्प ना हो। थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचे हो, अब ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक दो, ताकि उसी सीढ़ी से वापस नीचे ना आए। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, ऐसे ये तीन नियम है इस जीवन के, इस अर्पिता के जीवन के, इस निवेदिता के जीवन के, इस समर्पिता के जीवन के। लौकिक परिवार, उसके बाद विशेषता है, मेरी विशेषता। ये भी एक स्वर्णिम मृग है जो आकर्षित करता है। भरी किसने है? थी क्या पहले? भगवान से बनने से पहले उसको निखारा किसने? सजाया किसने? कार्य में किसने लगाया? विशेषता है। उसके बाद पद, छोटों को इंचार्ज बनना है, इंचार्ज में आपसी टकराव, दो विशेष माया है छोटों को बड़ा बनना है और बड़ों में टकराव। यहां बड़ा और छोटा किसी पद से नहीं होता है, स्थिति से होता है। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है, ना कि पद। पद से कोई लेना देना नहीं है, स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति को आगे बढ़ाना है। अगला धन, पैसा, सब कुछ आएगा, चरणों में डाल के जाएंगे सब लोग, केवल उनकी पालना करनी है। एक भाई बता रहा था, उनकी सेंटर की कोई बहन उनके पीछे ही पड़ी है, मोबाइल, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छा वाला, रोज एक ही बात, क्या करे अब, मुरली जाना छोड़ दे कि क्या करे। पालना करनी है आत्माओं की, सब कुछ आएगा चरणों में। लक्ष्मी नारायण के चरणों में दिखाई है भक्ति मार्ग में, जिसके हृदय में नारायण है लक्ष्मी वहां स्वतः है, सब आएगा अपने आप आएगा, केवल आत्माओं की पालना करनी है, अर्पण कर देंगे स्वयं को, वो सारे खजाने लुटा देंगे। धन की माया। अगला गिफ्ट्स, गिफ्ट्स ईश्वरीय सौगात देना बहुत अच्छी बात है, परंतु वो चाहना कि हमें मिले और दूसरे हमें दे और ज्यादा दे और अच्छा दे और अच्छी वस्तु दे, जैन धर्म में अपरिग्रह है, परिग्रह न करना, नॉन पोजिशन, असंग्रह, और दे और दे। अगला पर्यटन, ये लास्ट कर देते हैं यहां पर, पर्यटन अर्थात साइट सीइंग, यह भी एक स्वर्णिम मृग है, यह कोई साधारण मृग नहीं है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। सीता को जिससे धोखा हुआ है ये मृग है वो, बाकी स्थूल माया तो पता चलती है, ये उनका एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्मतर रूप है। है बहुत अच्छी बात, सेवाओं के लिए जाओ सब जगह। किसी एक रिट्रीट सेंटर की बहनें बता रही थी, एक ग्रुप आया था कहीं से योग भट्टी करने के लिए, तीन दिन, पहले दिन आया एक घंटा योग किया और फिर घूमने निकल पड़े, तो सीधा तीसरे दिन ही आए, फिर एक घंटा योग किया और वापस सेंटर पर। बीच के दो दिन पूरा घूम, जितना देखना था जगह, यहां जाऊं वहां जाऊं और उधर जाके योग भट्टी करके आए, योग भट्टी के नाम पर। कुछ और ही करना, यह भी स्वर्णिम मृग है। कितने हो गए, 10 तो हो गए होंगे, हम बस 10 बहुत हो गए, संख्या तो बहुत हो सकती है। तो ऐसे ये स्वर्णिम मृग। अच्छा, ओम शांति। और एक छोटी सी क्लास करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। थक तो नहीं गए ना, थक गए होंगे तो यहीं रोक देते हैं। एक छोटी सी लास्ट क्लास 5 मिनट के बाद। ओम शांति।